તારીખ 25/9/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 376 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 307
ભૂતિ દર્શન प्रश्न है। ज्ञान की परिणति में केवल ज्ञायक भाव का अस्तित्व ग्रहण करने का है क्या? क्या प्रश्न उठाया है? कि आत्मज्ञान होने के लिए अपना मौजूदगी है, ज्ञायक भाव मैंने अपने स्वरूप की मौजूदगी है, उस मौजूदगी का अनुभव करने का है क्या? ग्रहण करना, मैंने अनुभव करना, मैंने हिंदी आप क्या प्रश्न है कि ज्ञान की परिणति में क्या मात्र ज्ञायक भाव का अस्तित्व ग्रहण करना है? क्या प्रश्न उठाया है? कि आत्मज्ञान के लिए मात्र अपना स्वरूप ज्ञायक भाव में जानने वाला स्वभाव, क्योंकि सामर्थ्य रूप में है ना, स्वरूप है वो पावर के रूप में है, सामर्थ्य के रूप में है, तो उसी को अनुभव करने का है क्या? ऐसा प्रश्न उठाया। समाधान दिया है कि हाँ, ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण करना है। अस्तित्व मैंने एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मैंने मौजूदगी। क्या हुआ है कि हम हमारी मौजूदगी तो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जानते हैं, लेकिन गलत जगह पे। हम हमारे शरीर में हमारी मौजूदगी मानते हैं, हमारे जो विकारी परिणाम हैं, राग द्वेष मोह वगैरह वगैरह, उसमें हमारी मौजूदगी का अनुभव करते हैं। फिर से हमारी मौजूदगी, हमारा अस्तित्व, इसका अनुभव हम कहाँ करते हैं? वर्तमान में, राग आदि भाव में और शरीर आदि संयोग में। हम कहाँ हैं कि हम ऐसे मनुष्य हैं? तो शरीर को हम जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। और इससे आगे सूक्ष्म तौर से ले तो जो भी हमारे राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं, हम ऐसे हैं। जैसे हम मानेंगे कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो जवान हैं या बूढ़े हैं, या हम रागी हैं, हम व्यापारी हैं, हम बनिए हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इस प्रकार से हम हमारे मौजूदगी को स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि तुम ज्ञान स्वरूपी एक आत्मा हो, इस शरीर का रूप तुम्हारा रूप नहीं है। क्यों? कि ये तो आत्मा से अलग हो जाता है, आत्मा यहाँ से चला जाता है तो उसको जला दिया जाता है, शरीर का अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार किया जाता है, और वहाँ शरीर को मुर्दा के रूप में देखे जाता है, जीवंत पदार्थ नहीं देखा जाता। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जीव चला गया, इसमें से क्या चला गया? जीव चला गया, वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं, लेकिन जीव का मूल स्वरूप क्या है वो नहीं जानते। इसलिए जीव स्वरूप में अपने को अनुभव नहीं करके शरीर के रूप में और रागादि के रूप में अपना अनुभव करते हैं, वो गलत अनुभव है, वो मिथ्या अनुभव है, और इसी कारण से दुख की उत्पत्ति होती है। आत्मा के स्वभाव में जो सुख है, जो शांति है, इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है, यही कारण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे गलत अनुभव को, गलत फहमी को हटा करके हमें वास्तविक जो स्वरूप में है, जो रूप में है, उसी का हमें अनुभव करना चाहिए कि जिस अनुभव से हमें सुख शांति और आनंद मिलता रहे हैं। और इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म कोई ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, धर्म है इसका सूत्र हमारे आचार्यों ने लिखा है मागधी भाषा में, वत्थु सहावो धम्मो। वत्थु मैंने वस्तु, पदार्थ, इसका जो स्वभाव, मैंने इसका जो मूल स्वरूप, एलिमेंट्री, उसका मूल एलिमेंट, वो है, वही इसका धर्म है, वही इसका कैरेक्टर है, वही इसका स्वरूप है। इस तरह से वैज्ञानिक भाषा में डिफाइन किया है वस्तु को, वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही इसका धर्म है, ऐसा ही परिणमन करे, ऐसी उसकी अवस्था होवे, वही इसका धर्म है। धर्म कोई माला फेरना नहीं है, धर्म कोई उपवास करना नहीं है, धर्म कोई पैसे का दान दे देना वो धर्म नहीं है, कोई मंदिर बंधाना धर्म नहीं है, मंदिर जाना भी धर्म नहीं है, शास्त्र पढ़ना भी धर्म नहीं है। ये सब शुभराग है। क्या है? संसार के जो कार्य हैं वो अशुभ राग है। संसार के जितने भी गृहस्थ के कार्य हैं, व्यापार आदि के कार्य हैं, वो सब अशुभ राग है, और ये सब शुभ राग है। अशुभ राग से अशुभ कर्म बंधन होता है, वो पाप का फल भोगते हैं बहुत से लोग, बहुत से जीव। ऐसे शुभ राग से शुभ कर्म का बंधन होता है और पुण्य का फल भोगते हैं लोग। दोनों कर्म बंधन है। धर्म है वो कर्म बंधन से मुक्त होने का इलाज है, उसी को धर्म कहते हैं। क्योंकि मूल स्वरूप में न शुभ परिणाम है, न शुभ भाव है, न अशुभ भाव है, न पुण्य है, न पाप है। जिसका नाम जैन धर्म दिया गया है वो गुणवाचक है। कौन सा गुण है उसमें? कि जिसने मोह, राग, द्वेष और मिथ्या विपरीत अभिप्राय को, मिसकॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, उसको बदल दिया, जीत लिया, क्योंकि उसमें ताकत लगानी पड़ती है। हमारे उल्टे परिणाम, उल्टे अभिप्राय को हटाने में हमको ताकत लगानी पड़ती है, उसको जीतना पड़ता है। जो जीतता है उसको कहते हैं जैन। जैन है वो गुणवाचक नाम है। जिसने जीता वो जैन, और पूर्ण रूप से जीता उसको जीन कहते हैं। वो एक ही शब्द का दूसरा दूसरा नाम है। तो हम भगवान को जीन कहते हैं, जिनेश्वर कहते हैं, इसका जिनेंद्र कहते हैं। इसका यही कारण है कि उन्होंने मोह, राग, द्वेष और विपरीत अभिप्राय का अंदर में, भीतर में लड़ाई करके नाश किया है। इन भावों से लड़ाई करनी होती है। तो ये जो धर्म है वो वस्तु का स्वभाव है, और वस्तु के स्वभाव को यहाँ नायक भाव, नायक तत्व, आत्म तत्व ऐसा कहा है। उसका अस्तित्व, मैंने जैसा है इस रूप में अनुभव मौजूदगी, इसकी जैसी है ऐसी मौजूदगी को अनुभव में लेना, उसको कहते हैं ज्ञायक का अस्तित्व ग्रहण करना है। मैं कैसे जानता हूँ, मैं किस प्रकार जानता हूँ, वह कोई दृष्टि का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है। अब क्या कहते हैं, थोड़ी वैज्ञानिक बात चल रही है। आत्मा है, उसमें बहुत से स्वभाव हैं, बहुत से गुण हैं। इसमें तीन प्रधान हैं, एक दृष्टि माने श्रद्धान, एक ज्ञान और एक आचरण चारित्र जिसको बोलते हैं, तीन प्रधान हैं। दूसरे दो प्रधान हैं वो कारण कार्य रूप में हैं, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं वो कारण है, और जिसको पुरुषार्थ का फल कहते हैं वो आनंद सुख शांति है। ऐसे पांच गुण की प्रधानता है तो बहुत से गुण। गुण मैंने शक्तियां, श्रद्धा नाम की शक्ति है, ज्ञान नाम की शक्ति है, आनंद नाम की भी शक्ति है, प्रॉपर्टी है, ये सब आत्मा की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा साथ नहीं रहती, जैसे मकान है, जायदाद है, परिवार है, पैसे हैं, इज्जत है, ये सब हम प्रॉपर्टी को गिनते हैं संसार में, लेकिन वो हमेशा साथ में रहने वाली चीज नहीं है, इसलिए जीव की नहीं है। जीव की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र, पुरुषार्थ, आनंद सुख शांति, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी जीव में भरी हुई है, वो पावर के रूप में है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं किस प्रकार जानता हूँ, किस कारण से जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, ये श्रद्धान का विषय नहीं है। मैं किस प्रकार जानता हूँ, इसमें पर के और की बात आई, वह दृष्टि का विषय नहीं है। क्यों कि जानने में, हमारे जानने में दूसरे दूसरे पदार्थ आते हैं, तो दूसरे पदार्थ से हम हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का श्रद्धान नहीं कर सकते। दृष्टि मैंने श्रद्धान क्या करती है, अपने अस्तित्व को सिर्फ ग्रहण कर लेना, ये इसका कार्य है। प्रत्येक गुण का अलग अलग कार्य है, स्पेसिफिक कार्य है। ऐसे श्रद्धान का खास कार्य, स्पेसिफिक कार्य वो है कि वो अपनी मौजूदगी को ग्रहण कर लेना। तो अपनी मौजूदगी में दूसरा पदार्थ है ही नहीं, अपनी मौजूदगी में हम अकेले हैं। और ज्ञान में तो दूसरा पदार्थ जानने में आता है, दूसरे पदार्थ के साथ संपर्क होता है, संबंध होता है, तो वो श्रद्धान का विषय नहीं है। ऐसा यहाँ ज्ञानी फरमाते हैं कि तुम्हारे श्रद्धान का विषय अकेला तुम्हारा स्वरूप है, जिसमें सब ये प्रॉपर्टीज है, उतना ही तुम्हारा श्रद्धान का विषय है। जैसे आज हमारी श्रद्धा वो है कि हमारे पास जो पैसे हैं, हमारे पास जो इज्जत है, हमारे पास जो शरीर की तंदुरुस्ती है, हमारे पास जो हमारे परिवार हैं, हमारी ग्रुप है, इसलिए हम सुखी हैं। इस प्रकार के हमारे एग्जिस्टेंस को हम अनुभव करते हैं और श्रद्धान में वो सुख का कारण हमने ले लिया है। क्या होता है कि वो चीज हमेशा साथ में नहीं रहने से, जब जब इन पदार्थों का वियोग होता है, वो डिपार्ट होते हैं, उसका रिएक्शन आता है। जैसे घर के एक आदमी का निधन हो गया, मृत्यु हो गई, सब रोने लग जाएंगे। क्यों, कि इसके संयोग से हमने सुख माना था, वो इसका वियोग हो गया तो दुख होगा ही होगा, जबकि वो चीज हमेशा साथ में रहने वाली थी नहीं, वो तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए संयोग में आई थी। ऐसा शरीर का बनता है, ऐसा दूसरे दूसरे सभी संयोग का बनता है। जैसे कोई पैसे वाला निर्धन होता है तो उसको बहुत दुख होता है। इस प्रकार से हमारी श्रद्धा जमी हुई है, वो गलत जगह पे जमी हुई है, यही हमारे अनेक प्रकार के दुख का कारण है। वो सेंटर पॉइंट क्या है सभी बातों का, केंद्र स्थान क्या है, कि जीव को सुख क्यों होता है, जीव को दुख क्यों होता है, और उस सुख दुख होने के पीछे कौन सा साइंस काम करता है, कौन सा विज्ञान इसके पिछाड़ी है, ये चर्चा चल रही है वैज्ञानिक तौर से। तो कहते हैं कि जो श्रद्धान है उसका विषय तो अकेला एक आत्म स्वरूप है जिसमें सब प्रॉपर्टीज है, आत्मा की सब प्रॉपर्टीज है। अगर श्रद्धा उसको श्रद्धान में लेती है तो जीव सुखी हो जाता है, अगर उनको श्रद्धान में नहीं लेती है श्रद्धा, तो श्रद्धा अपना कार्य तो करेगी, तो वो क्या करेगी कि शरीर पैसे परिवार और उससे मकान इज्जत आदि में सुख का श्रद्धान करेगी, और उस प्रकार सबका उल्टा श्रद्धान चलता ही है। ये तत्व ज्ञान की जो प्रिंसिपल बात है, नींव की बात है, मेन खास खास बात है, उसमें एक खास बात है कि आपकी श्रद्धा कहाँ जमी हुई है, और वो ठीक है, वो राइट है, वो गलत है, वो आप देखिए और अनुभव करिए। सही चीज का गलत चीज का अनुभव करने से कोई फायदा नहीं है। हम कांच को हीरा मानने से कांच हीरा नहीं बनता, जाली नोट को सही नोट मानने से वो सही नहीं बन जाती। ऐसे जहां सुख नहीं है, जिन पदार्थों में सुख नहीं है, उन पदार्थों में भ्रांति से सुख का अनुभव करने से या श्रद्धान करने से हमें कभी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यही कारण से जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है ऐसा माना जाता है, उनको पूछा जाता है कि क्या आप पूर्ण रूप से सुखी है, तो कहेंगे कि नहीं, हम सुखी नहीं है, हमको अनेक प्रकार के टेंशन बहुत आते हैं, और सबसे बड़ा टेंशन तो मृत्यु का आता है, क्योंकि मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि सारी जिंदगी परिश्रम करने के बावजूद जो भी हमारे हमको प्राप्ति हुई ऐसा मानते हैं, हमको मिला, सब कुछ मिला, लेकिन एक झटके में हमको अलग होना पड़ता है। अखबार में रोजाना हमको पढ़ने में आता है, आज वो गया, कल वो गया, आज इसकी मृत्यु हो गई, कल इसकी हो गई। ये मृत्यु का भय सबों को सताता है। ये एक ऐसा विज्ञान है कि जिसमें सबसे पहले मृत्यु का भय चला जाता है। अगर किसी को बोला जाए कि एक टैबलेट खाने से मृत्यु भी नहीं होगी, तो मृत्यु का भय रहेगा नहीं। ऐसी कोई टैबलेट दी जाए तो इसके लिए आप क्या दोगे, हाँ, तो बोले कि आप जो भी मांगोगे। तो ऐसा नहीं, देखिए हम आप पूरी आपकी पूरी संपत्ति मांग लेंगे तो भी दे देंगे, क्यों, किसी सलामत तो पगड़िया बहुत हम कमा लेंगे, क्योंकि मरेंगे नहीं तो इतना नहीं मांगेंगे। हम तो पूरी संपत्ति तो ले लेंगे लेकिन आपको कर्जा करके और भी देना होगा, क्या देंगे क्या? तो मुझे कहा वो भी देंगे, लोन लेके देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? ये सम्यक दर्शन ऐसी टैबलेट है, और जो बिना चार्ज दी जाती है, इसके लिए कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे मुनि लोग, हमारे आचार्य नंगे थे, बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी कोई व्यवस्था का स्वीकार नहीं करते, उद्दिष्ट आहार भी नहीं लेंगे, हमारे लिए बनाए हुए आहार को हम स्वीकार नहीं करते, कपड़े तो हम पहनते नहीं, मकान तो हम रखते नहीं, जंगल में रहते हैं। उन्होंने ये चीज हमको दी है। किसने दी है? उन्होंने ये चीज दी है, आचार्यों ने ये सब ग्रंथ लिखे हैं। जो बौद्धिक स्तर से इंटेलेक्चुअल जायंट्स थे, हमारे धवल नाम के ग्रंथ हैं, षटखंडागम, आज से 2000 साल पहले पहले भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्त होने के बाद, उसको मृत्यु नहीं बोले जाते हैं, आखिर का जो आयुष्य होता है जिसके बाद दूसरा जन्म और शरीर नहीं मिलता है, सिद्धालय में जाया जाता है। आज भगवान महावीर का जीव नमो सिद्धानम सिद्धालय में है, उसको निर्वाण प्रसंग बोला जाता है, मृत्यु प्रसंग नहीं बोला जाता। वो निर्वाण को पधारे, इसके बाद करीब 400-500 साल में ये षटखंडागम नाम का ग्रंथ लिखा गया आचार्य पुष्पदंत और भूतबलि ने। इनके गुरु थे धरसेन आचार्य, वो सारे गुरु की पटावली है हमारे यहाँ। इनकी टीका किया है वीरसेन स्वामी ने और जिनसेन स्वामी ने, जिसके बड़े बड़े 31 वॉल्यूम है, इतने इतने जय धवल, धवल जय धवल और महाधवल के 31 वॉल्यूम है। जर्मन लोग फॉरेन से जब आए और उन्होंने ये ग्रंथ देखे तो उन्होंने पढ़ा कि ये मैथमेटिक्स उसमें इतना रहा है कि बहुत सी बात बियॉन्ड मैथमेटिक उन लोगों ने बताई है। ये लिखने वाले कौन थे? ये तो इंटेलेक्चुअल जायंट्स दिखते हैं, क्योंकि ये हमारे महाराज थे, मुनि लोग थे, जिसको कोई भी जीवन जीने की एमिनिटीज ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं मकान कपड़े और खाना पीना, इसकी व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने वो लिखी थी। क्योंकि उन लोगों के वहाँ जो विज्ञानी लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनको पूरी सुविधा दी जाती है, उनको इतना तनख्वाह दे जाता है कि इसके लिए बजट का लिमिट नहीं है, दो जगह बजट का लिमिट नहीं है, एक जासूसी खाता में नहीं है और एक रिसर्च साइड में नहीं है। क्यों? कि उसकी उपलब्धि ऐसी होती है। तो वो लोग इनके परिवार को पूरे पैसे देते हैं, उनको भी सब सुविधा, गाड़ी, खान पीन, एयर कंडीशन, कपड़े, मकान, सब अच्छे से अच्छी पूरी सुविधा देते हैं, तब वो लोग रिसर्च करते हैं। जबकि हमारे जो आचार्य बड़े साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने बिना कोई सुविधा की स्वीकार किए बिना ये सब रिसर्च जंगल में बैठ करके किया है, क्योंकि ज्ञान भीतर में से वो निकालते थे, ग्रंथों के आधार से वो ज्ञान नहीं करते थे। आत्मा में जो ज्ञान की प्रॉपर्टी है, ज्ञान का पावर है, वो बेहद है, असीम है, और वहाँ से वो निकालते थे और वो ज्ञान उन्होंने ग्रंथारूढ़ किया। हैं? और आनंद सुखी में रहते रहते, कोई भी सुविधा नहीं थी इसलिए वो दुखी नहीं थे, लेकिन वो सबसे सुखी थे। क्यों? कि सुख की प्रॉपर्टी भी उन्होंने उजागर की थी, ज्ञान की प्रॉपर्टी को भी उजागर किया था, दोनों का डेवलपमेंट किया था भीतर में, और वही साधना करके उसने वो काम किया था। तो उन्होंने ये बात की कि आपकी जो श्रद्धान है वो ठीक करो, सबसे पहले ज्ञान को समझ को ठीक करो, और श्रद्धा ज्ञान ठीक होने से आपका आचरण है, चरित्र है, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और ये तीन ठीक होने से बिना किसी प्रयास आपको सुख शांति और आनंद का अनुभव भीतर में से होता रहेगा। हाँ, निरंतर रात दिन होता रहेगा, वो प्रवाह हो जाएगा चालू अंदर में से। जैसे मुनिराज जंगल में रहते तो क्या उसको ठंड नहीं लगती होगी? क्या गर्मी के दिन में उसका गर्मी नहीं लगती होगी? और हमारे यहाँ बारिश होती है तो मकान में हम रहते हैं फिर भी थक जाते हैं कि अभी 4 घंटा से चलती है, 10-12 घंटा से चलती है, वो जंगल में पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहते हैं। ठंडी गर्मी बारिश ऋतु का प्रकोप जिसको बोलने में आता है उनको मालूम ही नहीं पड़ता, वो आनंद में उतने मस्त हो जाते हैं कि उसको मालूम ही नहीं पड़ता। उपवास किया नहीं जाता है, उपवास हो जाता है। उपवास माने आनंद में वास करना, उसको कहते हैं उपवास। जैसे हमें बिजनेस में इंटरेस्ट होता है तो हम घर में खाना खाने को नहीं आते हैं, अगर घर में खाना खाने को आते हैं तो गर्म गर्म रोटी खाने को मिलती है, लेकिन हम नहीं आते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑफिस में काम करने का रहता है। और ऑफिस में भी टिफिन आ जाता है तो हम 2-4 घंटे बाद भी खोलते हैं कभी कभी, होता है कि नहीं होता है? क्यों? कि हमारे काम में हमको जो इंटरेस्ट है उतना हमको खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं रहता। जबकि हम पैसा खाने पीने के लिए कमाते हैं। अब सवाल ये होता है कि खाने पीने के कमाते हैं या कमाने के लिए खाना पीना होता है, वो खाने पीने के लिए कमाना क्या होता है, वो बात ही उल्टी सुलटी हो जाती है। कभी हमारा व्यू पॉइंट वो है कि जब हमारा इंटरेस्ट कोई काम में लगता है हम खाना पीना भी भूल जाते हैं, याद भी नहीं आता हमको, विचार भी नहीं आता, विकल्प भी नहीं आता, होता है कि नहीं होता? ऐसे हमारे मुनिराज को, हमारे आचार्यों को, हमारे गुरुओं को भीतर में से आनंद उतना आता था कि उसके खाने का मगनगर में शहर में आकर के आहार लेने के विकल्प विचार भी नहीं होते थे, उनको कहते हैं उपवास। वो मूल चीज हो भूल गए लोग, अंदर में से तो आनंद आता नहीं और हम कृत्रिम नकल करने लग गए कि हमको नहीं खाना है, फिर खाएंगे नहीं, भूख तो लगेगी क्योंकि हमको तो आनंद आता नहीं अंदर में से, तो नहीं खाया, वही हमारे परिणाम थोड़े बिगड़ने लगेंगे, आकुलता बनेगी, फिर हम नींद लेंगे या हम ताश खेलेंगे या हम कुछ है टीवी देखेंगे या हम कुछ न कुछ कर लेंगे, हमारा परिणाम को डाइवर्जन देते हैं, डाइवर्ट करते हैं, लेकिन वो कोई सही तरीका नहीं है। इसलिए ऐसे नहीं खाने वाले प्रसंग को उपवास सही रूप में माना नहीं जाता है, मनवाना भी नहीं जाना चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए, और कोई मानता है तो उसको अनुमोदन ठीक, उसको सम्मत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत फहमी है, उसको हम मजबूत नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रसंगों में हम शरीक नहीं होते। संप्रदाय में आजकल लोग उपवास करते हैं लेकिन नकल करते हैं हमारे गुरुओं की। वो तो आनंद में विराजते थे तो भी उनको भूख का भान ही नहीं रहता था, वो सही उपवास है। आजकल हम परिणाम में तो गड़बड़ होती है और वो नहीं खाने का कर लेते हैं हठ से, जिद से, वो सरल परिणाम नहीं है। तो फिर उसको हम मानते हैं, मनवाते हैं, उसके फिर फंक्शन बनाते हैं और फिर फंक्शन में कोई नहीं आते तो हमको अच्छा भी नहीं लगता कि आप क्यों नहीं आए। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं जाते, इसका यही कारण है कि हम कोई गलत अभिप्राय को, गलत फहमियों को या रूढ़ियों को, ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करना नहीं चाहते, मानते नहीं, मनवाते नहीं, उसको सम्मत नहीं करते। हमारी असम्मति उसमें है, वो बात उसमें प्रसिद्ध होती है। ये बात बनती है हमारे यहाँ। मुद्दे की बात वो है कि समझ को ठीक करो, श्रद्धान को ठीक करो। शक्तियां है, उस शक्ति को श्रद्धान में लेना, विश्वास करना उसका, उतना ही दृष्टि का विषय है। उसका विश्वास करते ही हमारा जो गलत श्रद्धान है वो छूट जाएगा। श्रद्धान मिटने वाला नहीं है, या तो श्रद्धान गलत हो सकता है या तो श्रद्धान ठीक हो सकता है, सही हो सकता है। हमको ये जांच तलाश करनी है कि हमारे श्रद्धान सही है या गलत है। गलत है तो हमें दुख भोगना होगा इसके फल स्वरूप, और सही है तो इसके फल स्वरूप हमको सुख शांति रहेगी। मेरी ज्ञान परिणति पर को या अपने को कैसे जानती है, वो ज्ञान करने की बात है, वो ज्ञान का विषय है। श्रद्धान का कार्य तो सिर्फ मूल स्वरूप को श्रद्धान में लेना है। अब ज्ञान की जो प्रॉपर्टी है, ज्ञान की जो शक्ति है, उसका क्या काम है? अपने स्वरूप को जानना और दूसरे पदार्थ को भी जानना कि ये दूसरा है, मैं एक आत्मा हूँ, अपने जैसा स्वरूप मूल स्वरूप है, ऐसा जानना, वो ज्ञान का धर्म है या ज्ञान का कार्य है। और दूसरा है उसको दूसरे के रूप में जानना, वो ज्ञान का कार्य है। भगवान जिनेश्वर जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव वितराग परमेश्वर है, उन्होंने कहा कि तुम एक आत्मा हो और बाकी सब पदार्थ तुम्हारे से भिन्न है, तुम उसको उसमें अपनत्व मत करो, अपने आत्मा में ही अपनत्व करो। जैसे समाज में कानून है कि जो संपत्ति आपकी है उसमें आप अपनत्व कर सकते हो, दूसरे की संपत्ति में आप अपनत्व करोगे तो बाकायदा कानून भंग आपको सजा दी जाएगी। जैसे आपने चोरी कर लिया, आपने लूट कर लिया, हाँ, तो क्या होगा? तो आपको पकड़ करके सजा दी जाएगी। ऐसे ये जिनेन्द्र देव का कानून है कि आप एक आत्मा है, आप एक जीव है, दूसरे पदार्थ पर अपनत्व जमाने का आपका अधिकार नहीं है, फिर भी आप अधिकार से कोई कार्य करोगे तो आपको दुख भोगने की सजा मिलेगी बाकायदा। ये वितरागी कानून है, ये जिनेन्द्र के सर्वज्ञ परमात्मा के कानून है कि देखिए, आप एक सचेतन पदार्थ हैं, आप जीव हैं, आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है, दूसरे पदार्थ पर तो आपका अधिकार है ही नहीं अपनत्व करने का। लेकिन देखिए, आपका एक बाल भी सफेद होएगा आपकी इच्छा के विरुद्ध होएगा। हाँ, उसको रोक नहीं सकते। आप कितना भी प्रिकॉशन रखे, शरीर में बीमारी आ सकती है। अगेंस्ट विल, आपकी इच्छा विरुद्ध है वो। आपके शरीर में अनंत परमाणु है, परमाणु का बना हुआ है, जड़ परमाणु का बना है, उसमें चेतन नहीं है। आप जीव है, सचेतन है, वो अचेतन है, अजीव है, जड़ है। चेतन का अस्तित्व चैतन्य में है, जड़ का अस्तित्व जड़ में है। दोनों अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व मौजूदगी रखते हैं। एक परमाणु का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसमें भी अनंत शक्तियां हैं। कितनी? इसको हम एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं आजकल। और उसमें कितना पावर है अच्छी तरह हम जानते हैं कि एटम में कितना पावर है। वो बात हमारे आचार्यों ने, हमारे सर्वज्ञों ने हजारों साल पहले की है। वो साइंस हमारे यहाँ बहुत पुराना है। तो उसकी अनंत शक्तियां उसके पास है, उसकी शक्ति पर आपकी शक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता। जब शरीर के परमाणु पर अपना अपनत्व करने से दुख होता है या वो हो ही नहीं सकता है, तो फिर दूसरे जीव और दूसरे जीव के शरीर और दूसरे पदार्थों पर हमारा अपनत्व क्या दुख का कारण नहीं होगा क्या? जरूर होगा। यही कारण से हमारे तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ जो हुए, वो पैदा हुए राजा महाराजाओं के पास, उसके जन्म हुआ, बहुत पुण्य के प्रारब्ध लेकर आए थे तो चक्रवर्ती बन गए, छह खंड का अधिपति। छह खंड किसको बोलते मालूम है? ये हमारा जो पृथ्वी का गोला बोला जाता है ना, वो एक खंड का अंश है। हाँ, पूरा एक खंड नहीं है, आर्य खंड का एक भाग है, जिसमें रूसिया, यूरोप, अमेरिका, भारत, अफ्रीका सब आ जाते हैं, पूरे सब देश। एक ऐसे तो छह खंड है, इसका वो राजा बोला जाता था। उनको छोड़ करके जंगल में वो क्यों चले गए? वो तो ज्ञान लेके आते थे, सम्यक श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान लेकर के तो पैदा हुए थे। पूर्व भव में से वो ज्ञान लेके आए थे। वो तो माता के गर्भ में आते हैं, वो ज्ञान लेके आते। पुण्यशाली तो उतने होते हैं कि वो माता के गर्भ में आने से पहले, छह महीना पहले अवधि ज्ञान से इंद्र को पता चल जाता है कि फलाना तीर्थंकर फलाने फलाने के पेट में आने वाले हैं। तो वो एक बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं। वो तो राजा महाराजा के, वो रानी के पेट में आते हैं। उनके राज्य में छह महीने पहले वो रत्न वृष्टि कर देते हैं, रत्नों का बरसात। कोई दरिद्री नहीं रहे वहां, जहां ऐसे पुण्यशाली जीव आता है कोई दरिद्री नहीं रहते। जैसे राजाओं के नौकर भी श्रीमंत होते हैं, राजा के प्रधान भी श्रीमंत होते हैं, राज की नौकरी मिली है, ऐसे सब सुखी होते हैं जो राजा के आश्रित होते हैं। वैसे क्योंकि वो पुण्यशाली है, वैसे वो बहुत पुण्यशाली होते हैं। तो रत्न वृष्टि तो छह मास पहले होती है, बार बार होती रहती है। कोई निर्धन नहीं रहते, कोई दुखी नहीं रहते। फिर वो वहाँ उसका पधारना होता है। जब वो आते हैं, वो गर्भ में आते हैं, तो इंद्र देवियों को भेजते हैं कि तुम इन माता की सेवा करो। उनको कहीं भी शारीरिक पीड़ा नहीं हो, ये अच्छी तरह से सेवा करना भेज देते हैं। जब जन्म होता है इंद्र खुद हजारों देवों के साथ आते हैं, उसका जन्मोत्सव मनाते हैं, पांडुक शिला पे मेरु पर्वत पे ले जाते हैं, उसको अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बाल तीर्थंकर की पूजा की जाती है। ये सब बातें हमारे पुराणों में हैं। ऐसे लोग नग्न दिगंबर होकर के जंगल में क्यों चले जाते हैं, ये हमारा प्रश्न है। जिसको सुख संपत्ति और सुविधा इतनी थी कि जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, आज उतनी संपत्ति आज देखी नहीं जाती है, क्योंकि इंद्र तो इनके मित्र होते हैं, जो ऊपर से आते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उसके साथ मित्रता करते हैं। वो इंद्र की संपत्ति कितनी है गिनाए हम? 32 लाख विमान का वो अधिपति है। विमान में नहीं, एक सूर्य चंद्र एक एक विमान है, ज्योतिष के विमान है, इससे बड़े बड़े विमान ऊपर के देवलोक में है, वैमानिक देव है ना। एक एक विमान, विमान मैंने एक प्रदेश है, एक कंट्री है, उसमें आबादी कितनी है, असंख्य, करोड़ों अरबों में नहीं है। यहाँ तो पूरा हमारा पृथ्वी का गोला में 6 अरब से ज्यादा नहीं है, 595 करोड़ की आबादी है पूरी मनुष्यों की। वहाँ एक एक कंट्री में असंख्य, मैंने अरबों के भी संख्या से बाहर जाना पड़ता है, खरब निखरब से बाहर जाना पड़ता है, ऐसे 32 लाख कंट्री का वो राजा है, वो इनका मित्र होता है, चक्रवर्ती का नीचे आता है और संपत्ति इतनी होती है कि जिसके टाइल्स जो होती है महलों की, वो रत्नों की होती है, हीरों की होती है, इतने हीरे के बड़े बड़े पत्थर उनके वहां होते हैं, जिसके फर्नीचर इससे बनते हैं, प्लाई का नहीं बनता है, ये सब वर्णन आता है हमारे यहाँ। जिसके खुराक में हीरों की भस्में होती है, रत्नों की भस्म होती है, जो हम लोग खाएं तो टट्टी लग जाए, पचाई नहीं सकते, ऑर्डिनरी आदमी उसको खा नहीं सकता है, उतने वो ताकत वाले शरीर के होते हैं, इतने तंदुरुस्त होते हैं, फिर भी वो चले जाते हैं, वो सब ममत्व को क्यों छोड़ते हैं? वो त्याग करते, इसका मतलब वो है कि वो ममत्व को छोड़ते हैं, राज काज परिवार सबका ममत्व छोड़ करके जंगल में जाते हैं, सुखी होने के लिए जाते हैं, दुखी होने के लिए नहीं जाते हैं। बुद्धिमान तो बहुत थे हमारे से, ज्ञान तो बहुत लेके आए थे, अवधि ज्ञान लेकर के आए थे, मतिश्रुत तो हम दोनों को है विचार शक्ति, उनके पास एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, यहाँ से बैठे बैठे देवलोक को देखते हैं, दूरक्षेत्र दूरकालवर्ती पदार्थों का ज्ञान होता है उनको, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं, चमत्कारिक ज्ञान जिसको बोला जाता है, वो तो लेके आते थे पूर्व भव से। फिर भी सही ज्ञान में वो समझा गया है कि जीव का दूसरा पदार्थ है ही नहीं, हमारा कोई चीज नहीं है इस संसार में, शरीर भी हमारा नहीं है तो दूसरा कौन सा होगा? देखो हमारे बाल सफेद हो गए, हीरा लाल जी के हो गए, दूसरों को हो गए, क्या हम काले बना सकते हैं उसको? आजकल कृत्रिमता से आर्टिफिशियली डाई करते हैं, तो साइंटिस्टों ने ये बोला कि उसमें ब्रेन ट्यूमर होता है, तो डाई करने का छोड़ दिया लोगों ने, ट्राई करने का लोगों ने छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने, क्यों? कि ब्रेन ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक बाल सीधा होता है उसको टेढ़ा नहीं कर सकता, जो कर ली है उसको सीधा नहीं कर सकता, जो यहां से छूट जाता है उसको हम लगा नहीं कर सकता है, नो सॉल्यूशन कि हम उसको वहां लगा दे, फिर अगर हम नहीं चाहें तो भी टाल हो जाती है, फिर वीक पैरना अलग बात होती है, लेकिन बाल को वहां लगा नहीं सकते। एक परमाणु पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो हम जगत के अनंत परम परमाणु पर अधिकार जमाना चाहते हैं, कितनी आकुलता होगी बताइए, कितना दुख होगा बताइए। ये जो महासत्ता वाले हैं, अमेरिका है आज सबसे बड़ी महासत्ता, अमेरिका है, ईरान जितना उतना प्रदेश है, नक्शे में ईरान कितना है उतना है, उस पर हमला करने के लिए उसको 9 महीना तक 12 महीना तक सोचना पड़ा कि करे या नहीं करे, करे तो कब करे, कहीं उल्टा परिणाम नहीं आ जाए, और करे तो भी जितना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। मतलब वो है कि अगर कोई मनुष्य को बोला जाए कि तुम सारे विश्व पर अधिकार जमाओ तो वो भी उसको कम पड़ेगा, इच्छा इतनी बड़ी है, इच्छा के आकाश में सारे विश्व की संपत्ति एक राय के दाने के बराबर है, अभिप्राय में वो पड़ा है सबको, क्यों वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कितना चाहिए अनलिमिटेड। कंपनी तो हम बनाते हैं लिमिटेड, लेकिन हमको चाहिए अनलिमिटेड, है कि नहीं, हाँ, यानी उन्हें सब कुछ जान लिया है, अगर हम समझे नहीं समझे वो तो हमको समझते हैं अच्छी तरह, अनलिमिटेड चाहिए, कोई लिमिट ही नहीं है। जब चाहिए का लिमिट नहीं है तो उसके दुख और आकुलता का भी लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारे परिणाम खींचेंगे, खींचते हैं, खींचते तो आकुलता होती है, और आकुलता का दूसरा नाम दुख है, दुख किस चीज का नाम है, आकुलता का, और सुख किसका नाम है, निराकुलता का। तो निराकुलता कैसे हुआ जाए, आकुलता कैसे मिटाई जाए, इसका साइंस क्या है, साइंस मैंने वस्तु स्थिति क्या है, पदार्थ विज्ञान क्या है, उसको हम ठीक समझे, उसका हम स्वीकार करें, बस हर हालत में हमारी आकुलता हमारा टेंशन चला जाएगा। और ये ज्ञान, ये विज्ञान जैन शास्त्रों के अलावा और जैनियों के घर में है, और कोई जगह नहीं है, कहीं भी आप विश्व में जाओ कोई चीज, ये जो चीज है इसका मूल्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ शास्त्र पूजन क्यों है, देव गुरु शास्त्र तीनों की पूजा की जाती है, क्यों, कि जो हमारे देव गुरु है इसकी वाणी को ही हम शास्त्र कहते हैं, जिसके माध्यम से हम हमारा आत्म कल्याण, हमारी आत्म सुख शांति को बना सकते हैं, वो उस हमारे आत्म शांति को बनाने में वो साधन बनते हैं, कारण बनते हैं, इसलिए हम इसका आदर करते हैं, और आदर का नाम है पूजा, इसलिए देवगुरु शास्त्र की पूजा हमारे यहाँ है, इसी कारण से है। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान का क्या क्या कार्य है, कि अपने को जानना और दूसरे पदार्थ को जानना, बात यहाँ से चली थी, अपने को अपने रूप में जानना, दूसरे को दूसरे रूप में, दूसरे को दूसरे के रूप में जानने से हमारा इंटरेस्ट दूसरे में खत्म हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, जहाँ हमारा अपनत्व है वहीं है, जहाँ हमारा अपनत्व नहीं है हमारा इंटरेस्ट नहीं है, उस तरह से पर को पर के रूप में ज्ञान कराया है, श्रद्धान कराया है, जिससे अपने आप ममत्व खत्म हो जाता है। वरना ममत्व छोड़ना आसान नहीं है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन वस्तु स्वरूप का विज्ञान मालूम पड़ने से सहज रूप में सरलता से बिना हट किए बिना जिद किए अपनत्व मिट जाता है और अपनत्व के कारण से होने वाली आकुलता भी मिट जाती है। उसी का नाम सुख है। इस तरह से सुख दुख को केंद्र स्थान में रख कर के वस्तु का स्वरूप दिखाया गया है। वस्तु का स्वरूप को और सुख दुख को बिल्कुल संबंध है, बहुत संबंध है। इसलिए साइंस को और सुख दुख को साथ में रखा गया है। आगे के जो विषय है वो कल के स्वाध्याय में लेंगे। समाप्त समय समाप्त होता है यहाँ पर।